ఓం పరిస్థితికి ద్వారా పరిస్థితి ప్రాప్త కసే కియా జాయ్ వాస్తవ మే దేఖా జావే తో స్వస్థితి ఔర్ పరిస్థితి స్వస్థితి యే అందర్ సే ఆతి హై ఔర్ పరిస్థితి జో హై వో బాహర్ సే ఆతి హై పర్ సే ఆతి హై इन दोनों का आने का रास्ता ही अलग है, इसीलिए इन दोनों का आपस में टक्कर होने का कोई कारण नहीं बनता है। परंतु चलते चलते कब ब्राह्मण बच्चे में जो समय देना है, स्वस्थिति के लिए जो शक्तियां यूज करनी चाहिए और शक्तियों को परिस्थितियों में उलझ करके उसको वेस्ट करते हैं, जिस कारण स्थिति हलचल में आती है। वास्तव में देखा जावे तो परिस्थिति भी है वो एक साइड सीन है। साइड सीन देखने में तो हरेक को बड़ा आनंद हो रहा है। आप आज कहां भी जाते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर, और जब भी हम ट्रेन की, बस की, प्लेन की कोई भी टिकट निकालते हैं तो पहले हम यही ऑफर करते हैं कि हमें विंडो सीट दो। विंडो सीट क्यों मांगते हैं? क्योंकि साइड सीन है, और साइड सीन देख करके हमें बड़ा मनोरंजन होता है, टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। इसीलिए सभी विंडो सीट को वो पहला नंबर देते। जब ये स्थूल साइड सीन देख के हमें आनंद आता है, मनोरंजन होता है, तो जीवन में जो साइड सीन आती है वो देख के हमारा मन रंज क्यों होता है? उसका भी आनंद लेना आना चाहिए हमें, उससे भी हमारा मनोरंजन होना चाहिए। पर ये तब है जब हमारी जो स्थिति है वो स्वस्थिति पावरफुल हो और हम सदैव साक्षी की स्टेज के ऊपर स्थित रहे। जब अपने को साक्षी दृष्टिया होकर के हरेक परिस्थिति को देखते हैं, हरेक व्यक्ति को देखते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति होवे, कैसी भी व्यक्ति होवे, वो हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती। परंतु जब साक्षीपन की स्टेज को छोड़ के नीचे को देखेंगे तो स्थिति जरूर हलचल में आएगी। वैसे भी आप देखेंगे कि जब कोई टीवी देखता है, पिक्चर देखता है, कुछ भी देखने को जाते हैं, तो जब तक उनकी बुद्धि में ये रहता है कि हम इससे अलग है, साक्षी है, ये तो टेम्पररी है, नाटक, ये मनोरंजन, तो कैसी भी सीन आती है तो आनंद लेते हैं। परंतु कोई कोई व्यक्ति टीवी देखते ना चालू कर देते, क्रिकेट देखते हो गए, भारत की हार हो गई, अरे हो गई हार तो हो गई, इधर इनका हार्ट फेल हो जाता है। ये कौन सी स्टेज, ये कौन सी स्थिति? देख रहे हैं मनोरंजन के लिए, और परिस्थिति को देख करके, वातावरण को देख करके उन खुद का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। तो वैसा ही आज जो भी बातें आती हैं, कलयुग अर्थात समस्याओं का युग, भले हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, परंतु संगम युग जो है वो कलयुग और सतयुग के आदि का समय, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि, इन दोनों का मिलन होता है। तो आगे चलते चलते कभी पीछे मुड़ के देख लेते हैं तो हलचल में आ जाते हैं। पीछे कलयुग है, आगे सतयुग, आप लोगों को मालूम होगा। महाभारत युद्ध पूरा होने के बाद 5 पांडव द्रौपदी ये पहाड़ी के ऊपर गए चढ़ के, परंतु जब ये पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो इनके गुरु ने कहा बहुत ध्यान से चढ़ना, अटेंशन रखना, पीछे से कितनी भी आवाजें आवे, कुछ भी होवे, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। उस समय तो सिरिला यहां बोल दिया और चलने लगे आगे आगे पांडव, उसके पीछे पीछे द्रौपदी। चलने चलने की स्पीड में तो फर्क होता है, तो द्रौपदी जरा पीछे रह जाती थी, वो आगे बढ़ जाते थे, ये पीछे से चिल्लाती थी। जो पीछे मुड़ के देखता था वो गल के मर जाता था, कभी उसके पैर में पत्थर लग जाता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता। ऐसा करते करते लास्ट में सिर्फ एक धर्मराज चोटी के ऊपर पहुंचा और सभी गल के उधर ही खलास हो। ये तो दृष्टांत देते हैं, ये है हम लोगों के लिए कि जब हम इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं तो हमारे को पीछे से बहुत आवाजें आती है, लौकिक की आती है, अलौकिक की आती है, परिस्थितियों की आती है, वातावरण की आती है, वायुमंडल की आती है, प्रकृति की आती है, परंतु हमें कभी भी झिड़के नहीं देखना। क्यों? क्योंकि हमारी ये ह्यूमन रेस चल रही है। बाबा हमेशा कहते थे तुम्हारी ये ह्यूमन रेस, रेस में जो दौड़ने वाले होते हैं और विन करने वाले जो होते हैं, विजय प्राप्त करने वाले, उनका लक्ष्य हमेशा सामने रहता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। इसीलिए उस लक्ष्य को सामने रख करके पीछे वो दौड़ते हैं। अगर दौड़ने वाले इधर उधर देखेंगे, पीछे देखेंगे तो गिर जाएंगे। तो चलते चलते ये छोटी सी भूल करने के कारण, क्योंकि द्वापर से लेके हमने यही किया है, खुद को देखने की तो हमको फुर्सत नहीं मिली है, हमने औरों को देखा है, परिस्थितियों को देखा है, वातावरण को देखा है, और खुद को गिराया ही है, चढ़ाया नहीं। तो अभी जब बाबा ने हम बच्चों के सामने इतना ऊंचा लक्ष्य रखा है कि हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है, तो अभी हमारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? और बाबा ने हमें ये भी पक्का कराया है बच्चे, एक तो अपने लक्ष्य को सामने रखो और अपने साथ दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ये बनना ही है, मुझे विजय माला में आना ही है। अगर ये लक्ष्य पक्का नहीं होगा तो तुम्हारी कभी भी विजय नहीं हो सके। जैसा हम सभी के सामने मम्मा बाबा हैं, भले उनको ये मालूम था कि हम क्या बनने वाले हैं, उनकी रिजल्ट सब ब्राह्मणों को भी मालूम है कि ये ब्रह्मा सरस्वती जाके लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये मालूम होते हुए भी मम्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, मम्मा ने कितनी मेहनत किया। जब पहले दिन मम्मा बाबा के पास आई, बाहर दरवाजे पर चप्पल उतर रही थी, बाबा गद्दी पर बैठा था, मम्मा को देखते ही बाबा ने कहा ये कल्प पहले वाली राधे बच्ची आ गई। ये के बाद मम्मा ने राधा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ किया। ऐसा नहीं उसको ये मालूम पड़ गया कि मैं ये बनने वाली हूं तो वो निश्चिंत हो गई। मम्मा ने सारी सारी रात जाग जाग करके योग तपस्या की। सारे यज्ञ को संभालते हुए भी सदैव न्यारी रही, साक्षी होके रही। आपको और हमारे को तो पता नहीं है कौन सा नंबर आने वाला है, तो हमें तो कितना ध्यान देना पड़े अपने ऊपर। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि सदैव सी फादर फॉलो फादर करो, सामने ब्रह्मा बाप को रखो और ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम आगे बढ़ाते चलो। कदमों के निशान होते हैं ना, उसके ऊपर कदम रखना बड़ी बात नहीं होती है। नया रास्ता हो गए तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको और हमको उसी रास्ते पर चलना है जहां पर मम्मा और बाबा चले हैं, जहां पर हमारी दादियां चली हैं। हमें सिर्फ कदम रखना है। नया रास्ता होता है तो ढूंढना पड़ता है, पर ही ध्यान में रखिए, जब बाबा जिस रास्ते के ऊपर गया उसी रास्ते से हम जा रहे हैं, तो बाबा के सामने जो साइड सीन आई, जो परिस्थितियां आई, वो आपके और हमारे सामने भी जरूर आनी है। आप समझो, अहमदाबाद से यहां आते हैं, एक ही रास्ते से आ रहे हैं हम, तो मेरे आगे जो सीन सीनरी आएगी, आप उस रास्ते से आएंगे तो आपके आगे भी तो आएगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए रास्ता बदली करना पड़ेगा। तो हमारा और बाबा का रास्ता एक ही है, इसीलिए बाबा के आगे जो परिस्थितियां, बाबा के आगे जो परीक्षाएं आई, बाबा के आगे जो चैलेंजेस आई, वो आपके और हमारे आगे भी आनी। अगर हमारे को लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी रखनी चाहिए। उसको देख के घबराना नहीं है। बाबा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। बाबा लक्ष्य तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते, हम उसी के ही बच्चे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ साकार बाबा की कार्बन कॉपी नहीं पर फोटो स्टेट कॉपी बन जाओ। कार्बन कॉपी में तो थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, फोटो स्टेट कॉपी में कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ तुमको यही करना है और कुछ नहीं करना है। परंतु हम कभी कभी वो बनने के बजाय अपना थोड़ा चला देते भी, श्रीमत में थोड़ी मनमत को घुसा देते, परमत को घुसा देते, जनमत को घुसा देते, जिसके कारण तकलीफ होती। तो अभी हम देखते हैं कि जब हम इसी मार्ग पर चलते हैं तो कभी तन की समस्या, कभी मन की समस्या, कब प्रकृति की समस्या, कब व्यक्तियों की समस्या, अनेक अनेक समस्याएं आती हैं। क्योंकि कलयुग है ही समस्या का युग, तो समस्या ही आने वाली है। परिस्थितियां बाबा ने यह हमें कहा है कि ये परिस्थितियां अंत तक आएगी। फिर क्या, परंतु उसके लिए मेहनत नहीं करनी। जब हमें विश्व का महाराजा बनना है, फिर बनना तो मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी बाबा बच्चों का अलबेलापन देख के हंसी करते थे। बाबा कहते थे कि विश्व की राजाई लेना मासी का घर। आप लोग मुरली में सुनते होंगे ना, रिवाइज कोर्स। मासी का घर क्यों कहता था? क्योंकि सतयुग में मासी होती नहीं। होती है मासी? एक लड़का मासी कहां से आएगी? फूफी होगी, मामा होगा, पर मासी नहीं होगी। वास्तव में माँ घर, इसलिए बाबा कहता है मासी के घर आना बड़ा होता है। मासी के घर में जाएंगे ना तो ये नहीं पूछेगी तुम क्यों आए, बोलेगी भले आए, भले आए, को का आदर सत्कार करेगी तो ये मासी का घर नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। परंतु अपने अटेंशन देने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारा पढ़ाई के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। अपनी स्वस्थीभूत करने का आधार क्या है? शरीर को तंदुरुस्त करने का आधार है भोजन। अगर आप भोजन ठीक रीति से नहीं करेंगे तो शरीर में ताकत नहीं आती। उसी प्रकार आत्मा शक्तिशाली वो ही बनती है जिसका बाबा की मूर्ति के साथ प्यार, साथ प्यार है। बाबा जो बोलता है उसको जो प्रैक्टिकल में लाते हैं वो ही आत्माएं शक्तिशाली बन सकती। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। परंतु जब हमारा पढ़ाई के ऊपर फुल अटेंशन होता है, अटेंशन होने के कारण बाबा ने जो वो मुझे करना है, कुछ भी हो जावे किसी का मुझे कभी भी उल्लंघन नहीं करना है, ये हमारे पास निश्चय चाहिए। उसके बगैर हमारे अंदर परिस्थिति नहीं। बाबा ने हो स्वयं का परिचय दिया है, खुद का परिचय दिया है, बाबा दिया है। और ये जो वर्ल्ड ड्रामा है इसकी भी सारी समझ दिया है। अगर ये तीन बार सदैव हमारी स्मृति में रहे, बाबा बहुत बार ये समझाया है, सवेरे उठ के तीन बिंदी लगा लो अपने मस्तक के ऊपर, आप बाप और ड्रामा। तो जब ये तीन बिंदियां तुमने फिट लगा लिया अपने मस्तक, स्थिति में तुम स्थित हुए तो तुम्हारी कभी भी परिस्थिति से हार नहीं हो सकती। आत्मिक सेवा वो परमात्मा की याद दिलाती है और परमात्मा बाप की याद के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा हम आत्माओं को शक्ति मिलती है। बाकी हमारे विक्रम विनाश होते हैं, आत्मा प्योर बनती जाती। और उसके साथ साथ अगर ड्रामा हमें याद है, ड्रामा का ज्ञान बाबा को क्यों देना पड़ा? अगर ड्रामा हमें याद है तो हमारी स्थिति कभी हल नहीं। क्या बच्चों को क्या बताया? ड्रामा का राज हमें बताया है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं होता। जो होता है वो कल्प पहले के माफक होता है, होता पुराना है परंतु लगेगा आपको नया। रिपीट होते हुए भी वो नया है, वो पुराना और रील कभी घिसती नहीं है, समय के ऊपर वो बजती है। तो जब कोई भी परिस्थिति आती है तो आप उसका डट के मुकाबला कर सकते। ड्रामा याद है तो कि ये तो कोई नई बात नहीं, हमने तो कल्प कल्प इसका सामना किया हुआ है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। विश्वास के आधार पर विजय प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा गुण होता, अगर निर्भयता नहीं है तो आपके पास कितने भी रिफाइन अस्त्र शस्त्र हो गए पर हार खा ले, डर गए तो गए। इसीलिए के गुण को धारण करते हुए जब हम परिस्थिति को देखते हैं तो हम सहज ही ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। और बाबा ने जो हम बच्चों को कल्प पहले वाली स्मृति दिलाई है, और हमें जन्म से ही बाबा ने विजय का वरदान दिया है, ब्रह्म को तिलक लगाया विजय भव का। तो जब हमें वरदान ही विजय भव का है तो हमारी हार कैसे हो सकती? परंतु इस ड्रामा को देखते हुए धीरज रख सकता है। आज भी बाबा ने कहा ना, कल्याणकारी ड्रामा है ये, पक्का याद रखो। अकल्याण की सीन होगी तो भी तुम्हारा कभी उसी तो कल्याण देख। उसे ये धीरजता, ये जो धीरजता का गुण है, धैर्यवत का गुण है, ये साकार बाबा में लौकिक जीवन से लेके था, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर की आत्मा है। तो फर्स्ट नंबर की आत्मा है, उसके जो इतनी ऊंची उसकी महिमा है सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण की, लास्ट तक उसके जो गुण है वो एकदम गायब नहीं होते, उसकी लकीर जरूर रह जाती। आप चंद्रमा को भी देखेंगे ना, गायब नहीं, लास्ट पतली सी लकीर भी रह जाएगी। बाबा में पहले से ही शिव बाबा की प्रवेशता में धीरजता का गुण था, इसीलिए कि बड़ी परिस्थितियां आई, निर्भयता के साथ धीरजता चाहिए। कितनी बड़ी परिस्थितियां आई, परंतु ड्रामा को देखते हुए वेट एंड सी, ये दो बातें चाहिए। आप ठहरो, देखो आप में करना जो करना। तो ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता रही, आज किसी चीज का नुकसान है, कोई हमारी प्रिय वस्तु है उसका किसी के हाथ से नुकसान हो गया, टूट गई, फूट गई, गुम गई, ये भी परिस्थिति है। उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? अरे वस्तु टूट गई, पर हमारी स्थिति तो नहीं टूटनी चाहिए। वस्तु बिगड़ पर हमारे यहां मन तो नहीं बिगड़ना चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए, क्योंकि हरेक चीज परिवर्तनशील है। और जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हम इन आंखों से देखते हो, सब नाशवंत। आज आप अपने शरीर को ही देखो ना, जो पहले था आज वो है, कैसा इसमें परिवर्तन हो रहा है। चढ़ती कला की तरफ नहीं जाता है दिन प्रतिदिन, उतरती कला की तरफ जाता है। फिर आप किस पर गुस्सा करेंगे बताओ, किस पर करेंगे? क्योंकि ये ड्रामा का है कि परिवर्तन होना ही। तो इसीलिए कुछ भी होता है, नफा होवे, नुकसान होवे, फायदा होवे, जो भी होवे, मुझे ये ध्यान में रखना है कि परिवर्तन सब दिन होता नहीं एक समान, परिवर्तन ये ड्रामा का नियम होने के कारण ये होना ही है, मुझे मेरी स्थिति को नहीं बिगाड़नी। तो ब्रजेंद्रा दादी बताती थी, देखो लौकिक में भी बाबा के अंदर कैसा था धीरजता का गुण। एक बारी, क्योंकि बाबा जब जवाहरात का धंधा करते थे, तो सारी हैदराबाद की मार्केट में जो भी ज्वेलर होते थे, जो हीरे के व्यापारी होते थे, वो रोज सवेरे या हीरा बेचने वाले जो है आके ज्वेलर्स को देने वाले, वो सभी बाबा के पास हीरे लेके आते थे और उसका मूल्य कथन कराते थे। बाबा की आंख बड़ी ये थी, तीक्ष्ण थी हीरा परखने की, तभी तो आपको भी परखा उसने, ऐसा थोड़े परख के लिया। तो बाबा उसका मूल्य बताते थे, इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य, हीरे तो महंगे ही होते हैं। तो एक दिन एक हीरा बेचने वाला आया मूल्य करने के लिए, और उसने, बाबा कुछ कार्य में थे, बाबा ने कहा वहां इसको रखो, इसे टेबल के ऊपर रख दो, मैं देखता हूँ। फिर वो चला गया, बोला मैं बाद में आता हूँ लेने के लिए। अभी बाबा भी कार्य में थे, बाबा को ख्याल नहीं रहा, वो वहां से पूरी गायब हो गई। और कभी तो ऐसा होता नहीं था, कोई ऐसा कभी भी नहीं हुआ कोई उठा के ले जावे या कुछ करे, और थे बहुत कीमती हीरे। तो बाबा ने विचार किया कि ये किसने किया होगा, यहाँ जो नौकर है काम करने वाले, वो तो सब बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर बाबा को ख्याल आया, एक दूसरा आया था व्यक्ति, उसके साथ एक छोटा बच्चा था, दो दो छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने शायद उठाया होगा, बाबा को ऐसा ख्याल हुआ। अभी किसको ऐसा ही तो नहीं बोल सकते कि तुमने उठाया, तो बाबा उसके घर में गए, वो तो चले गए थे बच्चे, वो था ऐसा गरीबी व्यक्ति था। उसके घर में गए तो दोनों भी भाई थे, बाबा ने बड़े छोटे भाई को बुलाया, बोला इधर आओ बेटा, छोटे छोटे थे, बोला तुमने जो वहां से तुम्हारे बड़े भाई ने बता दिया है कि तुमने वहां से हीरे की पुड़ी, वो पुड़ी उठाई एक, वो कहां रखा है? तो बोला नहीं नहीं उसने बता दिया कि आपको? बोला हाँ उसने बता दिया है। तो फिर वो बेचारे को क्या मालूम तो कहां रखा, बोला मैंने नहीं वो बड़े भाई ने रखा है। फिर उसके बड़े भाई को बुला के अलग पूछा कि तेरे छोटे भाई ने बताया तूने वो पुड़ी कहां रखी है? बोला वो ऐसा कैसा, मेरे को तो बोला था नहीं बताऊंगा, फिर आपको कैसा क्या बता दिया? तो बोला बताया उसने, फिर उसने क्या किया था छत में ऐसी वो पुड़ी अटका के रखी थी, बाप को भी नहीं, उनको तो मालूम भी नहीं था हीरा क्या होता है, पर ऐसा ही लगा के खेलने के लिए लेते ना बच्चे, हीरे तो चमकते हैं, तो निकाल करके बाबा को दी। देखो बाबा में धीरजता कितनी, उस बाबा को मालूम था इन्होंने उठाया, परंतु बोला नहीं कुछ। फिर उन बच्चों को लेके मिठाई की दुकान पर लेके गया, वहां उनको मिठाइयां दिलाई, कपड़े की दुकान पर लेके गया उनको ड्रेसेस। देखो बच्चे ऐसी घर पूछे चीज नहीं उठना, ये चोरी है, ये पाप कर्म है। उन्होंने बोला नहीं नहीं दादा अभी हम कभी भी नहीं करेंगे, हमारे से बड़ी भूल हो गई। तो धीरजता कितना काफी है, परंतु हम थोड़ा भी कुछ हो जाएगा ना तो एकदम एब्सेंट हो जाते हैं। तो छोटी सी परिस्थिति स्थिति को डगमग कर देती है। क्या हम उस समय ये नहीं ख्याल में रखते हैं कि परिस्थिति तो अभी आई है, परंतु आज जो मेरी इस स्थिति को बनाने के लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने बरस लगे मेरे को, किसी को पर बरस लगे होंगे ज्ञान में चल के 15 बरस से अपनी स्थिति बना रहे, हमारे जैसे को 55 बरस लगे, 60 बरस लगे, अभी इतना लंबा पीरियड लगा हमको ये स्टेज बनाने के लिए, और छोटी सी बात, छोटी सी परिस्थिति ने मेरी स्थिति को डगमग कर दिया। इसको क्या कहे, रॉन्ग है या राइट, क्या बोलते हैं आप? इसीलिए हमें हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता। अभी ये कोरोना का आया, बाबा ने पहले से ही बता दिया था कि ऐसा समय आएगा, तो बाबा की मुरलियां, ऐसा समय आए तुम घर का दरवाजा नहीं खोल सकेगे, तुम घर के बाहर नहीं जा सकेगे, ऐसी बीमारी होगी फटाफट लोग मरेंगे, कोई दवाई नहीं मिलेगी, कोई पिन्नी पहनने वाला नहीं रहेगा, पिन्नी मरने के बाद करते हैं ना, कोई नहीं रहेगा। इन पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया था, उनको तो मालूम था उन्हीं स्थिति को बरोबर, और जिन्होंने एक कान से सुन के दुकान से निकाल दिया तो बचल में आ गए। ये क्या है, बाबा को पहले से बताना था ना, भगवान को दोष देंगे, बाबा को पहले से बताना था ना क्या स्थिति आने वाली है, हम अपने को तो कम से कम ठीक कर लेते रहे, क्यों क्या कैसे वैसे इस जंगल में चली अपनी स्थिति को हलचल में ला दी। अभी दोष किसका कहेंगे, हमारा दोष हुआ ना जो हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए बाबा जो बोलता है उसके ऊपर अटेंशन रखो। बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि आगे चल के इससे भी खराब परिस्थितियां आने वाली है, पांचों भी मिलके नाचेंगे, अकेले नहीं नाचेंगे। अभी तो एक नाचता है, कहां धरणी कंप हो गया, कहां ये हो गया, दूसरी तरफ फिर देखो एक तरफ सूतेगा, कहां पर देखो फिर अनाज आ जाएगा तो इधर का उधर हो जाए, लास्ट में तो कुछ भी होने वाला नहीं, व्यक्तियों के द्वारा आएगी परिस्थिति, प्रकृति के द्वारा परिस्थितियां आएगी, और विकार जो है अगर दबा के रखे हुए होगे तो वापस उथल खाएंगे। सबसे बड़ी समस्या, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंदर किसी भी विकार को दबा के नहीं रखो, उसको खलास करो योनी से। उसके लिए अपने ऊपर कितना खींचनी चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा ना हमारे अंदर क्या कमी है। घड़ी घड़ी आती है, इसका बहुत अच्छा अव्यय समझाया हुआ है। माया इसीलिए आके घड़ी घड़ी सताती है सताने वालों को, क्योंकि उनका कर्जा लेके रख। आप किसी व्यक्ति का तुम कर्जा लेके रख लो, वो आपको नींद करने देगा, घड़ी घड़ी आपका दरवाजा ठोकेगा, मेरा कर्जा दे वापस। तो कोई ना कोई विकार का अंश अंदर पड़ा, इसलिए माया आती है, वो लेने को आती है, तुमको सताने को नहीं आती है। तुमको ऐसा लगता है मेरे को ही क्यों सताती, अरे उसका कारण आ रही। तो उसके लिए खुद चेकिंग चाहिए, खुद के ऊपर अटेंशन चाहिए, पढ़ाई कम चाहिए, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। देखो आप बाबा की एक लिखाओ, कितनी वारी बाबा बोलता है बच्चे मुझे याद, किसी भी देहधारी को याद नहीं कर, किसी व्यक्ति पदार्थ को याद नहीं करना मेरी याद में। क्योंकि बहुत समय का ये जो अभ्यास है ये हमको अंत में काम आने वाला है। थोड़े समय का अभ्यास नहीं काम, बहुत समय का अभ्यास हमें। तो जब से हमने ईश्वरीय जन्म लिया है तब से लेकर के हम देखें कि हमने अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर, बीच में रुकी है, हमारा सारा सप्लाई बुद्धि की लाइन के ऊपर। द्वारा जो प्राप्तियां होती है, प्राप्तियों का आधार क्या है? बुद्धि योग बल। अगर लाइन ही कट हो गई रेलवे की बीच में से, तो तुम्हारा माल तो उधर ही रह जाएगा, इधर तो आएगा ही। तो बाबा ने सब कुछ समझाया हुआ है, परंतु हम अलबेले बन के चलते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर कितना ध्यान देते, एग्जाम के दिन आएंगे तो माताओं की नींद फिटी होगी, बच्चों का एग्जाम होगा परंतु नींद इनकी फिटी है। क्यों? बरस उनका वेस्ट चला जाएगा, उनका तो एक बरस जाएगा, हमारा तो कल्पांतर वेस्ट चला जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस देते हम, वो तो फिर भी दूसरे बरस में पास हो जाएंगे, हम तो अभी फेल हुए तो कलब कलब के लिए फेल होते रहेंगे। फिर इतना सीरियसली, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, सीरियसली पढ़ते हैं। क्यों? हमारा बाप मुफ्त में पढ़ाता है, इसलिए बोलते अरे पढ़ो, नहीं तो देखो इतनी फी भरनी पड़ती है, इतना खर्चा होता है, यहाँ तो बाबा फी नहीं लेता है, मुफ्त की पढ़ाई है, इसीलिए ध्यान नहीं देते हैं क्या? हमेशा ध्यान में रखो, समस्या कुछ भी नहीं है, परिस्थिति कुछ नहीं है, कमजोरी है हमारी और कुछ। आज देखो शरीर में अगर ताकत नहीं होगी ना, ये गिलास भी आप नहीं उठा सके, गिलास में है क्या? कुछ भी नहीं, एक छोटा गिलास भी नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं। तो वैसा ही अगर आत्मा में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो छोटी बात को भी उसको बड़ा लगता है, परंतु बड़ी बात को भी छोटा कर दो। बाबा कहता है तुम पहाड़ को राई क्या परंतु रुई करो, राई तो फिर भी कड़क होती है पर रुई तो फूक मारो तो उड़ जाती। अगर आत्मा शक्तिशाली है तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आवे फूक मार के उसको उड़ा सकती। जड़ तत्वों में देखो कितनी समझ है, नदी है, पानी पानी बहता है, पहाड़ों में से पानी आता है, आप देखते हैं ना, उनका कोई सीधा रास्ता नहीं होता है, कितने टेढ़े बांके रास्ते, कहां से भी वो पानी रास्ता निकालता है अपना। एक तरफ समझो उसको कोई पत्थर ने अटकाया, वो दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी से तीसरी तरफ जाएगा। और कोई पत्थर ऐसे होते हैं जो उसको छोड़ते ही नहीं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो भी वो क्या करता है, उनको ही ऐसा शेप दे देता है उसके, ये करके घिस करके उनका शिवलिंग बन जाता है, उनकी पूजा होती। प्रकृति में देखो कितनी ताकत। जो उनका सामना करती है, जो उनका रास्ता रोकते हैं, वो उनको ही पूजनीय बना के छोड़ देते हैं। हम ब्राह्मण क्या करते, इसीलिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके खुद को चेक करके हम चेंज कर सकते। बाबा बोलता है सारा दिन तो तुम दूसरों से बातें करते हो, अमृत वेले बाबा से भी बातें करते हो, कभी खुद के साथ भी तो बात करा करो। तो मालूम पड़ेगा खुद का परिवर्तन हम कर सकेंगे, नहीं तो परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए हमें और कुछ नहीं करना है, पुरुषार्थ का शॉर्टकट है फॉलो फादर, बाप को फॉलो करते रहो, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रास्ता पूछना नहीं पड़ेगा किसी से भी, पूछ पूछ के जाते हैं तो टाइम लगता है, ये तो पूछना है ही नहीं, सामने एकदम क्लियर रास्ता है। तो परिस्थिति जो है, बाबा कहते हैं ना इसको तूफान समझो, इसको तोहफा समझो। कोई कोई आके कहते हैं हमारे पर ही बहुत परीक्षाएं आती है, हमारा समस्या है, अरे क्यों नहीं आएगी, तुम्हारे को बड़ी डिग्री मिलेगी इसीलिए आती। जिसको बड़ी डिग्री लेनी होती है उसको परीक्षाएं तो बहुत देनी पड़ती है, तो ये तो गुड है, ज्यादा परीक्षाएं आती है, ज्यादा समस्याएं आती है, घबराते क्यों हैं तुम, तुम हल करो ना बैठ के। सदैव सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लो। बाबा कहता है तुम्हारे को इतना भी अक्ल नहीं है, आज दुनिया में पहचान वाला होता है, कोई रिश्तेदार होता है बड़ा आदमी, कहेगे वो फलाना मिनिस्टर हमारे फलाने का फलाना लगता है, उससे जाके अपना काम निकाल के आएंगे कि मेरा मामा तेरा फलाना लगता है, ये लगता है, वो लगता है, पहचान वाला है, उससे काम निकाल के आएंगे। कहां कहां से पहचान के अपने काम निकाल के आते हैं, और यहाँ हमारा बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ का क्यों नहीं फायदा लेते हो, तुम मेरे से काम निकालते हो, मैं सदैव तुम्हारे अंग संग हूं, बाप जितना तो शक्तिशाली कोई भी नहीं है, तो साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगी ये माया की आंधी और तूफान। ये परिस्थितियां आंधी, माया की आंधी तूफान है, पर माया कैसे आएगी, पर्यत में आएगी, व्यक्ति के में आती है, संबंधों के रूप में आती है, उसके लिए परखने की, माया को भी दुश्मन को भी परखने की शक्ति चाहिए, और परखने की शक्ति तो दुश्मन को भी मित्र है ना, यादगार रामायण में सीता ने और चली गई शोक वाटिका। तो माया भी बड़ी चतुर है, अलग अलग रूप लेके आती, मालूम ही नहीं पड़ेगा ये माया है या क्या है, और ही गिराने की बात करेंगे किसी को। हमारा होता है ना ये फलानी बात होती है ना, तो हमारी स्थिति डगमग हो जाती है, तुम जाकर के बात करते हो क्या बोलेगा, अरे ऐसा ही होता है, हमारी भी यही हालत है भाई, हमारा भी ऐसा ही होता है, भी बात होती है ना, हमारी भी स्थिति बहुत हलचल में आ जाती। बोला उल्लू के घर में आए मेहमान, बोला मैं उल्टा लटका हूं, तू भी लटक जा, चल। अरे तुम से अच्छे डॉक्टर से तो दवाई दे जाके, अरे बताओ तेरे को कोई दवाई देवे या और बीमार कर देवे तेरे। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी समझो आती है परिस्थिति, आप कभी भी परिस्थिति के सामने खड़े होके देखना नहीं, आप देखो नीचे जाते हैं, हम प्लेन में जाते हैं, बड़े बगीचे कैसे दिखाई पड़ते हैं? ऐसे छोटे टापू, हरियाली, नदियां जला बह रही, वो भी अमुक टाइम तक दिखाई पड़ती, उसके बाद तो नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य तो दिखाई नहीं पड़ते। जितना हम ऊपर जाते हैं नीचे की चीजें होती जाती, तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति आवे आप ऊंची स्थिति में चढ़ जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आएगी वो परिस्थिति। जब हम ऊंची स्टेज में चले जाते हैं परिस्थिति एकदम छोटी हो जाती, पर नजदीक बैठ के हम देखते रहते देखते रहते देखते रहते। जरा सी बात होगी उसको बैठ के खींचते रहे, ये रबड़ जैसा होता है, तो आप खींचो जितना तानेंगे ना उतनी बड़ी हो जाती है, छोड़ दो एकदम तो उसको तानते रहेंगे बैठ करेंगे। इसीलिए तानो नहीं उसको, ज्यादा सोचो नहीं कभी भी परिस्थिति के ऊपर, वो आई है चली जाएगी, क्योंकि ये साइड सीन चलती है, साइड कोई खड़ी थोड़ी होती है, साइड की सीन के वो चलती रहती है, हम आगे बढ़ते रहते वो पीछे छुटती जाए। आप आगे बढ़ना, आप खड़े होकर दिखाई, पर साइड सीन एक तुमने देख लिया, फौरा देख लिया, तो आगे बढ़ो, जाके बगीचा देखो ना, उसको ही क्यों बैठ के देख रहे हो? तो एक बार ही आप छोड़ दो उसको, आगे चलो। तो जितना जितना हम आगे उतना ये पीछे हटते जाते। स्थिति को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। परिस्थितियां तो बहुत खराब हाली है, बाबा ने बता दिया, उसके लिए हमें बहुत मजबूत होके रहना है, उनका मुकाबला करना है, उस आत्मा मत भरनी है, पावरफुल बनना है। ऐसा नहीं उधर बाम का ठका हो गया, इधर हमारे हार्ट का ठका हो गया, दोनों साथ में हो गया, ऐसा नहीं हो। तो स्थिति को तो पावरफुल बनाना पड़ेगा ना, बाबा नहीं बना सकते। बाबा बोलता है जीवात्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, तुम खुद के खुद मित्र शत्रु। मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ, बहुत सारे भले भोला ना क्या, परंतु इतना भोला नहीं है, तराजू है उसके भी हाथ में, जितने को उतना ही करता है। मैं तुमको रास्ता बताऊंगा चलना तुम्हारा का, मैं तुम्हारे को विश्व की बच्चाई देता, बनना तुम्हारा काम है। देखो फिर भी क्या बोलते, लायक बनना तुम्हारा काम है, मैं लायक बनाता हूँ। अगर वो किसी को विश्व की बादशाही देवे किसी को नहीं, ये तो पक्षपात हो गया, उसको भगवान कौन कहेगा? इसीलिए वो सिर्फ बताने का काम करूंगा, इसलिए बोलते हैं मैं गाइड हूँ, गाइडेंस देने का काम करता हूँ, बाकी चलना नहीं चलना तुम्हारा काम है, मैं क्या करेगा? टीचर पढ़ाएगा, पढ़ना नहीं पढ़ना तो स्टूडेंट का काम है ना, हिसाब शारीरिक हिसाब किताब। बाबा को बोलता था, बाबा का बड़ा अच्छा डायलॉग बाबा का होता, ब्रह्मा बाबा बोलते थे मेरे को इतनी किया, बाबा रख लिया है आपने जरा वही, जब तेरे को खा मैं भाग के चला जाता हूं, क्योंकि वो किया तुम भोगो मैं को, वो तेरा हिसाब तेरे को चुकतू करना है। तो जिसके तन का आधार लेता है उसको भी ऐसा बोलता है, आपको और हमारे क्या बोलेंगे? तो हमें अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत बनाना है, अच्छे से सामना करके माया जीत जगत। इसीलिए बाबूजों को बड़ा है, बड़ी अच्छी युक्ति बताई है, सदैव अपने को इस सृष्टि के ऊपर समझो, हम गेस्ट है, मेहमान, आज मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर हम, मैं समझो और माया को गेट आउट करो, बोलना आना है दरवाजा बंद। माया का आने का दरवाजा क्या है? मैं और मेरे, ये माया का दरवाजा चलो और समझ के चलो, समझ कर्मों में मानता आती है, विचारों में मानता आती है, न्यारापन आता है। कहां भी मेहमान बन के चले गए तो न्यारे होके रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा तो भाई हम तो दो दिन के लिए आए, हम क्यों जाएंगे इन बातों, खुद को एकदम अलिप्त कर लेते हैं, नहीं तो लिप्त हो जाते उसमें, फंस जाते। तो बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति होवे, आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बाबा के बच्चे हैं। परंतु क्या करो, सदैव सर्वशक्तिवान साथी को अपने साथ रख करके और आगे बढ़ते रहो, तो विजय तुम्हारी हुई पड़ी है। ओम शांति।